शाम को लगभग 8 बजे प्रियल ट्रेनिंग सेंटर वापस आ गई। आते ही उसकी नज़रें निक को ढूंढने लगी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे निक नहीं मिला तो वो अपने कमरे की ओर जाने लगी। जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तभी निक जीन के ऑफिस से बाहर निकल कर आया। आते ही उसने प्रियल को देखा तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। प्रियल कमरे में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुई तभी निक तेज़ी से कमरे में आया और आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रियल निक को देखकर खुश हुई पर उसे कमरा बंद करते देख वो घबरा भी गई। उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, क्या हुआ सा, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर उसने पूछा, आपने कमरा क्यों बंद किया है? निक काफ़ी गुस्से में था। वो दरवाजे के पास से आगे बढ़ता हुआ गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, ओह जस्ट शट योर माउथ एंड ओनली लिसन टू मी। हाँ तो क्या बोल रही थी तुम, सब ठीक तो है ना? तो सुनो, अब तक तो ठीक नहीं था पर अब हो जाएगा, अब सब अच्छे से ठीक हो जाएगा। प्रियल और ज़्यादा घबरा गई। मतलब मैं समझी नहीं, क्या हुआ? निक उससे थोड़ी ही दूर रह गया। हाँ तुम तो बहुत भोली हो ना, कुछ नहीं समझती हो। वो अपने चेहरे के अंदाज़ को भी बदल रहा था। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब समझा दूंगा, सब अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें। निक इतने गुस्से में था कि प्रियल उसे वैसे ही देखकर बुरी तरह डर गई थी। निक उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार की तरफ ले गया। प्रियल का दिल निक को इतने करीब पाकर जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा रही थी तो उसने निक से दूर जाने की कोशिश की। ये देखकर निक ने पीछे से उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया और उसे कसकर वापस दीवार के पास ले गया। वहां उसने दोनों हाथों से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। इस बार निक के दोनों हाथ प्रियल को पकड़े हुए थे ताकि वो उससे दूर न जा सके। प्रियल के डर से आंसू निकलने लगे, उसके हाथ में भी दर्द होने लगा। निक ने जब उसे पकड़कर खींचा था तो प्रियल का हाथ मुड़ गया था जिस वजह से उसे दर्द हो रहा था। प्रियल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है सर, आप क्या कर रहे हैं? निक ने चेहरा उसके पास करते हुए कहा, मुझे भी हुआ था, तुमने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, तुम्हें उसका कुछ हिस्सा तो मिलेगा ना? प्रियल रोने लगी, बट मैंने क्या किया ऐसा, मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे डर लग रहा है। निक हल्का सा मुस्कुराया, डरो मत, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ जो किसी के साथ गलत करूँ। लेकिन मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, निक थोड़ा साइकोटाइप बिहेव करता हुआ बोला। इस छोटे से दिमाग पर थोड़ा जोर दो प्रियल और सोचो तुमने किसके साथ क्या गलत किया, या अब वो भी मैं बताऊँ। प्रियल कुछ बोलने वाली थी पर निक ने उसे बीच में रोक लिया। ओके वेल मुझे बताओ कौन हो तुम, उसने पूछा। प्रियल सहमी सी बोली, मैं कौन हूँ आप अच्छे से जानते तो हो मैं कौन हूँ, निक चिल्लाया, अपना पूरा नाम बताओ। प्रियल शर्मा। निक गुस्से में हंसने लगा, अभी भी झूठ। वो एकदम से झपटा और उसके नज़दीक होते हुए उससे पूछा, अच्छा बताओ तुमने इंस्टीट्यूट में किस लिए एडमिशन अप्लाई किया, एक ऑफिसर बनने के लिए या इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए? कुछ तो प्लान किया होगा ना फ्यूचर का, कोई टारगेट, कोई मोटिव, कुछ तो होगा ना? प्रियल को कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहे, वो रो रही थी तो उसके ये सब पूछने पर उसका रोना और बढ़ गया। तुम नहीं बताओगी ना, निक ने कहा। अच्छा मैं बताता हूँ, तुमने यहाँ एडमिशन क्यों लिया? मेरे लिए लिया था ना तुमने यहाँ पर एडमिशन, यही सच है ना? तुम यहाँ मेरे लिए हो ना? प्रियल को लगा निक को सब कुछ पता चल गया। उसे पता चल गया उसने यहाँ निक के लिए एडमिशन लिया था। प्रियल को याद था जीन ने उसे बताया था अगर कोई उसे पसंद करता है तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। उसे लगने लगा निक इस बात की वजह से गुस्से में है। उसने हल्की सांस ली और कहा, लेट मी एक्सप्लेन सर, मुझे समझाने दीजिए। क्या समझाओगी तुम प्रियल, निक बोला, समझाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कब प्रियल की बात निक नहीं सुनना चाहता था पर फिर भी प्रियल ने बोलने की कोशिश की। वो बोली, मैंने यहाँ एडमिशन लिया क्योंकि मैं प्रियल आगे भी अपनी बात कहना चाहती थी लेकिन निक ने उसकी बात बीच में काटी और बोला, क्या प्ला, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लान करके आई थी, वो भी अपने बाप के कहने पर, और यहाँ मैं आप सब लोगों की जासूसी कर रही थी, है ना मिस शर्मा? ओ सॉरी मिस दत्ता, मिस प्रियल प्रभास दत्ता, यही है ना तुम्हारा पूरा नाम और यही है ना तुम्हारी सच्चाई, इसी के लिए हो ना तुम यहाँ? प्रियल निक और एली के रिश्ते से पूरी तरह से अनजान थी और इस बात से भी कि निक मिस्टर दत्ता से इतनी नफरत करता था। प्रियल को समझ नहीं आ रहा था निक उसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा था और उसने मिस्टर दत्ता का नाम क्यों लिया था, उसे मिस्टर दत्ता से क्या प्रॉब्लम थी। निक ने दोबारा अपनी बात पर जोर दिया, बोलो कुछ प्रियल, बताओ यही है ना सच्चाई? चुप हो गई, सच सामने आ गया तो बोला नहीं जा रहा है तुमसे? प्रियल ने कहा, मैं दत्ता नहीं शर्मा हूँ, वो मिस्टर दत्ता तो मेरे डैड हैं, निक फिर बीच में बोला। उसने प्रियल के हाथ छोड़ दिए और पीछे हो गया। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है प्रियल तुम मिस्टर दत्ता से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड कैसे, उन्हीं की फैमिली हो। बार बार एक ही चीज़ सुनकर प्रियल को गुस्सा आ गया। वो बोली, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं मिस्टर दत्ता की फैमिली से हूँ, मैंने कुछ गलत किया है क्या उनकी फैमिली से होकर? प्रियल की इस बात से निक को और गुस्सा आया। वो पीछे दीवार की तरफ गया और मुक्का जोर से उसमें दे मारा। मुक्के के लगने की आवाज हुई और प्रियल इससे फिर से डर गई। निक मुक्का मारने के बाद उसकी तरफ पलटा और बोला, सामान उठाओ अपना और निकलो यहाँ से। तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ रुकने का। मैंने तुम्हारे सारे इंतजाम कर दिए हैं। तुम अब यहाँ से अपना बोझिल बिस्तर उठाकर अपनी फ्रेंड आरोही के रूम में सेटल हो सकती हो। वो थोड़ा सा रुका और रुकने के बाद कहा, देख लो, यही फर्क है तुम लोगों में और हम लोगों में। हम तुम्हारी तरह नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपनी फ्रेंड के साथ ही सेटल किया है। वो फिर रुका और अपनी जैकेट में हाथ डालकर वो नोटिस बाहर निकाला जो यहाँ उसके लिए आया था और उसे निक ने इंस्टीट्यूट से भेजा था। वो नोटिस उसे देता हुआ बोला, और ये लो तुम्हारा नोटिस। इसमें जो लिखा है वो पढ़ो और खुद को सही प्रूफ करो, जो कि तुम नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। अब तुम्हें 7 दिनों में खुद को सही प्रूफ करना होगा। प्रियल चौंक गई। कैसा नोटिस? उसने पूछा। जीन ने मुझे बोला था मैं, निक ने फिर उसकी बात पूरी नहीं होने दी और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आई सेड लीव, और अब मेरे सामने भी मत आना। अब मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे और दिखावटी बचपने में नहीं आने वाला। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। पर सर, मैंने कहा, लीव इट, चुपचाप निकलो यहाँ से। निक ने अपने हर एक शब्द को जोर लगाकर और रोक रोक कर कहा। प्रियल को अभी तक सारी बात ही ठीक से समझ नहीं आई थी, मगर निक का गुस्सा देखते हुए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई थी, मगर अब दोबारा रोने लगी थी। रोते हुए वो अपने सामान की तरफ बढ़ी और उसे जल्दी जल्दी बैग में डालने लगी। निक वहीं पास खड़े होकर उसे ये सब करते हुए देखने लगा। प्रियल खुद को रोने से रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर इसके बावजूद उसका रोना नहीं रुक रहा था। उसने सारा सामान बैग में डाला और फिर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद निक ने दोबारा गुस्सा दिखाया और दरवाज़ा उसके जाने के बाद जोर से बंद कर दिया। प्रियल कमरे के बाहर थी, जहां उसके ठीक पीछे दरवाज़ा बंद हुआ था। अंदर रोने के बाद वो यहां भी रोने लगी। वो कुछ देर तक यहां रोती रही, इसके बाद आरोही के कमरे के लिए चली गई।
निक कुछ देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। इसके बाद उसने जीन को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया, वो सब कुछ जो उसके जाने के बाद इन 2-3 दिनों में हुआ था। जीन वो सब सुनते ही बोली, ओ माई गॉड, आई डोंट बिलीव इट, यार प्रियल ऐसा कर सकती है, पर क्यों? फिर उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है यहाँ। निक ने कहा, अब कुछ भी मिसिंग नहीं है जीन, जो था वो सामने आ चुका है। मैंने उसे तुम्हारे रूम से भी बाहर कर दिया। मैं ऐसे धोखेबाज इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता। रोन भी वहीं था। वो बोला, हे भगवान, कैसी बात कर रहा है, और ऐसी नहीं है वो, इतना तो मैं भी जानता हूँ। उसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है वो ऐसे काम नहीं कर सकती। इस तरह की दिखने वाली लड़कियाँ वो ईमानदार होती हैं। जीन ने भी कहा, हाँ निक, वो ऐसी लड़की नहीं लगती, बस कहीं किसी तरह की गलतफहमी ना हो। इसके बाद वो बोली, एंड तुमने उसे आरोही के रूम में कैसे सेटल किया? वहाँ तो कोई और लड़की रहती थी ना? निक ने हल्की आवाज़ में कहा, वो हॉलीडेज पर है, 6 दिन की वो भी। और उसके बाद, जीन ने पूछा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मिस दत्ता चली जाएगी। अब की बार 3-4 दिनों के लिए गई थी, लेकिन अब वो परमानेंट हॉलीडेज पर जाएगी। जीन गुस्से में बोली, क्या किया है तुमने निक? कैसा देखो, गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाना। तुम अक्सर गुस्से में उल्टी पुल्टी हरकत कर देते हो, जो बाद में सुधरे भी नहीं सुधरती। मुझे बताओ, इस बार तुमने क्या किया? मैं नहीं बताने वाला। मुझे लग रहा है तुम लोगों को मुझसे ज्यादा उस धोखेबाज की चिंता है। अगर ऐसा ही है तो खुद ही आकर देख लेना, खुद आकर देख लेना मैंने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं। निक ने इतना कहकर फोन काट दिया। रोन और जीन दोनों टेंशन में आ गए, क्योंकि वो दोनों जानते थे निक क्या कर सकता है और किस लेवल तक सोच सकता है। नॉर्मल चीज कभी उसके दिमाग में भी नहीं आती। जीन फौरन रोन से बोली, हमें वापस चलना चाहिए रोन, मुझे डर लग रहा है ये निक कहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर जाए, वो काम भी खतरनाक करता है। रोन ने भी कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, देखता हूँ मैं क्या करूँ। अगर शाम की कोई फ्लाइट बुक होती है तो हम वापस जाने का रास्ता पकड़ते हैं, फिर वहाँ जाकर इन हालातों को सही करने की कोशिश करेंगे और जो भी सच्चाई है उसका पता लगाएंगे। प्रियल निक के कमरे से बाहर निकलने के बाद काफ़ी देर तक बाहर रोती रही। इसके बाद उसने सामान उठाया और आरोही के कमरे की ओर चल दी। प्रियल अपने सामान के साथ रोती हुई आरोही के रूम में आई। प्रियल के हाथ पर सूजन आ चुकी थी, जो निक के हाथ मरोड़ने की वजह से आई थी, और उसके हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे। प्रियल ने दरवाज़ा खोला तो आरोही की नज़र उस पर पड़ी। आरोही उसे देखकर घबरा गई। वो उठी और दौड़कर उसके पास गई। पास जाते ही उसने पूछा, क्या हुआ प्रियल, तुम्हारी हालत बिगड़ी भी कैसी है? और उसने हाथ की तरफ देखा, तेरे हाथ को क्या हुआ? हाथ को देख कैसे लाल हो गया? प्रियल कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसका रोना नहीं रुक रहा था। उसने खुद को संभाला और रोना रोक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। आरोही भी समझ नहीं पा रही थी वो क्या पूछे। उसने दोबारा पूछा, क्या हुआ, बताना, रो क्यों रही है? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बोला ना, कुछ नहीं हुआ, प्रियल ने कहा और उसे एक तरफ कर बेड की ओर चली गई। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो आरोही, उसने अपना सामान बेड पर रखा, अपना सामान वहीं रखकर वो बाथरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के पास बैठकर फिर से रोने लगी। आरोही ने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने किसी नए दोस्त सुधा को कॉल किया। सुधा के फ़ोन उठाते ही आरोही ने कहा, हेलो सुधा, क्या तुम मेरे रूम में आओगी? पता नहीं यार प्रियल को क्या हो गया है, वो बस जोर जोर से रोए जा रही है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ओके रुक, मैं अभी आती हूँ, तू टेंशन मत ले, सुधा ने कहा और उसके रूम में जाने के लिए अपने कमरे से निकल गई। सुधा आरोही के रूम में आई। सुधा और आरोही बाथरूम के पास आई और सुधा ने प्रियल से कहा, प्रियल कम आउट, क्या हुआ तुम्हें? देख पता ना यार, हम बहुत टेंशन हो रही है। वो प्रियल को जानती थी, जो भी है हम बाहर आकर उसके बारे में आराम से बात करेंगी। सुधा की आवाज़ सुनकर प्रियल रोते हुए बाहर आई और उन दोनों के गले लग गई। उन दोनों ने उसे संभाला और शांत कराया। फिर प्रियल ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो अभी कुछ देर पहले जीन के रूम में हुआ था। उसे सुनने के बाद सुधा ने कहा, कैप्टन निक को मिस्टर दत्ता से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो इतना गुस्सा, इतनी नफरत, आखिर क्या किया था मिस्टर दत्ता ने उसके साथ? आरोही बोली, जबकि दोनों एक जगह काम करते हैं और हाई पोजीशन पर भी हैं, बहुत डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो साथ में लेने होते हैं, उसके बावजूद भी, प्रियल रोते हुए बोली, शायद कोई बिजनेस राइवलरी हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पूरी टीम है, सिर्फ वो दोनों मिलकर डिसीजन नहीं लेते, मगर जो भी हो उसमें मैंने क्या किया? आरोही झिड़की, बिजनेस राइवलरी, आर यू मैड? हाथ देखो अपना, कितनी सूजन आ गई है, पूरा सूज गया है, ऐसा लग रहा है मिस्टर दत्ता की दुश्मनी तुम्हारे हाथ पर निकाली है, जरूर कोई और बात है, मुझे कोई बड़ा ही पंगा लग रहा है। सुधा ने प्रियल से कहा, पर तुमने अपने बारे में छुपाया क्यों उनसे? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो सबसे पहले शो ऑफ करते हैं ताकि उन्हें कोई बेनिफिट मिल सके, और तुम हो कि मिस्टर दत्ता से रिलेटेड होने के बावजूद भी तुमने छुपाया? अगर तुम इस बारे में कुछ भी कहती तो अब तक यहाँ नहीं, बिल्कुल इंस्टीट्यूट में होती। प्रियल ने रोना थोड़ा कम किया और कहा, मैंने सबको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने यहाँ पर छुपकर एडमिशन लिया था। सुधा ने हैरानी जताई, पर आरोही उससे बोली, मैं और जीन इस बारे में जानते हैं, प्रियल ने आगे कहा, और मिस्टर दत्ता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगा निक को या किसी और को इस बारे में पता चलेगा तो वो उनसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, और अगर यहीं उन्हें पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो तुम लोगों को नहीं पता कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो बस मौका ही ढूंढते हैं मेरे गलती करने का और दीदी को नीचा दिखाने का। वो वैसे भी दीदी को कहते रहते हैं उन्होंने बचपन में मेरी कस्टडी लेकर बहुत बड़ी गलती की है, आज कैप्टन निक मुझे उसकी बेटी कह रहे थे, मैं नहीं जानती कैप्टन निक को कैसे ये गलतफहमी हो गई मैं उनकी बेटी हूँ, जबकि वो तो मेरी बहन के पिता हैं। आरोही के मुँह से निकला, इतने बुरे, बड़े पिता? प्रियल ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, शट अप यार, इस वक्त पर मजाक नहीं, मेरी दीदी मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी है और वो मेरी दीदी से 10 साल बड़े हैं, ज्यादा फर्क नहीं है उन दोनों में। प्रियल ने इतना कहकर अपने हाथ में मौजूद नोटिस को पढ़ना शुरू कर दिया। नोटिस पढ़ने के बाद उसने कहा, अब ये एक अलग प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगी, मेरे पास सिर्फ 1 वीक है खुद को सही प्रूव करने का, अगर मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाई तो मैं इंस्टीट्यूट के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में फाइन तक नहीं भर पाऊंगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। तुम अपने जीजा से क्यों नहीं पैसे मांग लेती, वो तो अच्छे खासे अमीर हैं, आरोही ने कहा, वो इस कंडीशन से निपटने के लिए आइडिया दे रही थी। मुश्किल है, मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती। सुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल ज्यादा सैड मत हो, हम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। मगर कैसे, प्रियल ने पूछा, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा, सुधा ने कहा।
रात के 10 बजे सब डिनर कर रहे थे, निक भी, मगर उसे प्रियल दिखाई नहीं दे रही थी। प्रियल को ना पाकर उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और खुद से ही कहा, मैंने ये भी नहीं कहा था कि तुम खाना खाने भी ना आओ, अगर तुम बाद में मुझे दोबारा अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती थी तो क्यों छुपाया अपना सच? खैर, और कर भी क्या सकते हैं, अगर तुम सच बता देती तो तुम्हें जासूसी करने को कैसे मिलती? निक ने खाना खाया और फिर वहां से चला गया। रात के लगभग 1 बजे वो गुस्से में जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। दौड़ते हुए उसे बार बार वो दृश्य याद आ रहे थे जिसमें उसने प्रियल का हाथ पकड़ा था और उसे अपने काफी करीब कर लिया था। वो जैसे जैसे उन दृश्यों को याद कर रहा था वैसे वैसे और तेजी से दौड़ रहा था। काफी देर तक दौड़ने के बाद वो रुका और मशीन बंद कर दूसरी तरफ आ गया। वहां उसने तौलिया उठाया और अपना पसीना साफ करते हुए कहा, मैंने वो सब करके कोई गलती तो नहीं कर दी ना, या मैं उसे गलत जज तो नहीं कर रहा हूं, वो भी उसके मिस्टर दत्ता की बेटी होने की वजह से। इसके बाद उसने अपना तौलिया गुस्से में पटका और कहा, पता नहीं क्यों उसके करीब होने पर अजीब सा लगता है, क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ, जैसे वो कोई अनजान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई जानी पहचानी सी है, जानी पहचानी सी, कोई अजनबी। वो प्रियल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था मगर चाहकर भी इसमें कामयाब नहीं हो रहा था। प्रियल को उसे दिमाग से निकालना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल।